किया है।
पिता के क्या कर्तव्य है, पुत्र के क्या कर्तव्य है, पति के क्या कर्तव्य है, पत्नी के क्या कर्तव्य है, साधु का क्या कर्तव्य है, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, सन्यासी का क्या कर्तव्य है, सबके अपने अपने कर्तव्य बताए और उस कर्तव्य कर्म के निर्धारण में परस्पर में एक दूसरे के कल्याण की भावना रखने बताई। पुत्र है तो वो ऐसा व्यवहार करे कि जिससे माता पिता को प्रसन्नता हो और मैं माता पिता के कल्याण में कैसा सहयोग कर सकता हूं। पिता माता भी पुत्र के कल्याण के विषय में विचार करें। हर एक संबंध है वो एक दूसरे के कल्याण करने के लिए है। ऐसे ही पति और पत्नी का जो संबंध है वो भी एक दूसरे के कल्याण के लिए है। ये जो गठबंधन होता है विवाह में, वो गठबंधन इस बात का प्रतीक है कि आप एक नए जीवन में बंध रहे हो। अब इस गठबंधन को खोलना है, क्योंकि जितने जीवों का संबंध होता है वो अनादि काल के कर्मों के फल से होता है। जिस व्यक्ति को जो पत्नी मिलती है, जिस पत्नी को जो पति मिलता है, वो यूं ही नहीं मिलता है। अनादि कर्मों का संग्रह होते 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 इन जीवों का मेल होता है, और जितने दिन का मेल होता है कर्म संस्कार खत्म हो गए, उनमें से या तो पति मर जाएगा या पत्नी मर जाएगी। ये सबके साथ लागू है। ऐसा विचार सबको करना चाहिए। कल जो बात चली थी उस बात का स्पष्टीकरण थोड़ा समझना है कि भाई माताएं बहने कहती हैं हम लोग सत्संग में आवे, और यहां सेठ जी ने कह दिया कि पति की आज्ञा हो तो आओ, और पति आज्ञा नहीं देते हैं तो इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो पहले ये विचार करो कि पति आज्ञा क्यों नहीं देते। वे कोई सफा मूर्ख तो है नहीं, अनजान है नहीं, उन लोगों को कोई भगवान ने अकल नहीं दी ऐसी बात तो नहीं है। फिर क्यों करते हैं, क्यों मना करते हैं? क्योंकि कुछ न कुछ इस बहाने से घर के काम में बाधा पड़ती है, और साथ साथ में थोड़ा और व्यवहार होता है, माने काम करने का वो उस व्यवहार में परिवर्तन नहीं देखते, वाणी से हम संतुष्ट नहीं करते और घर के कामकाज से संतुष्ट नहीं करते हैं, तो उनके मन में विचार आता है। यद्यपि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, परंतु बहुत जगह ऐसा होता है कि सत्संग के नाम पर परिवार में खलबली हो जाती है। हम तो जाएंगे साहब, हम तो ऋषिकेश जाएंगे, हम तो फलाड़ी जगह, और घर में जरूरी काम हो रहा है। तो सत्संग एक ऐसी चीज है जिसमें बेचारे दब जाते हैं। पहले ये देखो कि जरूरी काम है क्या। यदि बहुत जरूरी काम है तो घर वाले कहे वैसा करना चाहिए, और अकेले नहीं जाना चाहिए। यदि उचित सत्संग मिलता है, अच्छी सत्संग मिलती है, तो वहां पतिदेव को कहो आप साथ में चलो, आप साथ में चलो। आपको यदि वहां का वातावरण पसंद आए तब तो ठीक है, आप भी आओ मैं भी आऊं। और यदि आपको वहां का वातावरण पसंद नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप नहीं जाएंगे मैं क्यों जाऊंगा। लेकिन पतियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा मुख्य काम इसका कल्याण करने का है। मेरी आज्ञा माने, ये तो इनके लिए शास्त्र की आज्ञा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसके हित के लिए कह रहा हूँ या केवल मेरे स्वार्थ के लिए कह रहा हूँ, ये बात तो अपने मन में तोलना चाहिए। यदि अपने मन में कोई स्वार्थ है या हम सत्संग नहीं चाहते हैं इसलिए इसको भी सत्संग न करने दें, ये सत्संग में रोकने का कायदा नहीं है। क्यों कायदा नहीं है कि सत्संग के अंदर जो लाभ होता है वो लाभ किसी उपाय से नहीं होता। माताओं बहनों को ये चाहिए वे अपना व्यवहार सत्संग करने के बाद घर में इतना अच्छा करें, इतना प्रेम का करें, इतना सौहार्द करें कि उनको ये समझ में आ जाए, घर वालों को, पति को, पुत्र को, सबको, कि सब बदल गए, इसका स्वभाव सत्संग से बदल गया। अपने स्वभाव को आप लोग बदलती नहीं हो और जस के तस रहते हो। बात सुनने का तो आनंद ले लिया, हम लोग कहने का तो आनंद ले लेते हैं लेकिन उसके अनुसार हम चलते नहीं। आप सुन लेते हैं उसके अनुसार आप चलते नहीं तो घरवाले देखते हैं, व्यर्थ में समय खराब करते हैं। तब उनका टोकना एक कारण से कुछ समझ में आता है, व्यवहार को बदलना चाहिए। सेठ जी ने ये बात भी कही है कि आप यदि व्यवहार बदलोगे तो उनके ऊपर इतना अच्छा असर पड़ेगा कि जब से ये सत्संग में गई है इसकी भाषा, इसकी बोली, इसकी क्रियाशैली, इसका धैर्य और इसका क्रोध, ये बहुत बदल गया। पहले जैसा क्रोध नहीं आता इसको, पहले जैसे कड़वा नहीं बोलती, पहले जैसे ये जो है व्यवहार में बहुत अच्छी सुधर गई। तो कहेंगे कि नहीं सत्संग में चलो, जाओ तुम भी चलो हम भी चले। ये माताओं बहनों के हाथ की बात है, पति से आज्ञा लेना ये हाथ की बात है। जैसे चुंबक है वो लोहे को खींच लेता है, लोहा थोड़ी जाता है, चुंबक की शक्ति वो खींच लेता है। इसलिए जितना अच्छा व्यवहार करोगे उतना परिवार के अंदर आप सत्संग का एक विशेष प्रचार करेंगे और उससे प्रभावित होकर के वे जब तक सत्संग में नहीं लगे तब तक आपने क्या सत्संग किया, ऐसा भाव रखना चाहिए। जब तक हम दूसरे को सत्संग में नहीं लगा सके, दूसरा मतलब परिवार के ही लोग, पति है, पुत्र है, और है, जो परिवार के लोग हैं, ये ही नहीं लग सके तो हमने क्या सत्संग किया है। सेठ जी को एक बार किसी ने कहा कि सेठ जी आपने गीता का बहुत प्रचार किया है, आपके ऊपर तो भगवान की असीम कृपा है। कि काय का प्रचार किया मैंने, काय का प्रचार किया, गीता जी का किया, इतनी गीता जी छापी, कितने लोगों को गीता याद हुई। पहले गीता लोग मरने वाले को पढ़ाते थे और आपस में बोलते थे कि भाई वो गीता उसको सुना दी, बस अब जाने वाला है। आपके कारण से गीता का प्रचार हुआ। सेठ जी ने कहा कि जब तक बच्चा जन्मते ही रोने की जगह है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव है, माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, ये न बोले तब तक क्या मैंने प्रचार किया। ये सेठ जी का वाक्य था। इसलिए सत्संग करें परंतु उसका प्रभाव घर में दिखा। क्या घर वाले बिल्कुल ही टस से मस नहीं होते तो फिर घर वालों से बहुत विनम्रता से निवेदन करो, आप चलो और मुझे मत रोको। और अकेले नहीं आना चाहिए, पास पड़ोस के सब माइये माइये भाई सब एक साथ, माइये जाना माइये माइये इकट्ठी होकर के वो एक साथ। अकेले तो चाहे कैसे ही महात्मा हो, कितने ही बड़े महात्मा हो, अकेले नहीं जाना चाहिए। आप तो बहुत अच्छे पवित्र हो परंतु ऐसे देखा देखी दूसरे भी आएंगे जाएंगे तो ये स्वरूप अच्छा नहीं लगता। यद्यपि शुद्धम पर लोक विरुद्धम, ना चरणीयम ना करणीयम। यद्यपि शुद्ध है, सबके भाव बड़े शुद्ध है परंतु लोक मर्यादा क्या कहती है, लोक मर्यादा का उल्लंघन केवल कभी कभी भगवान ही प्रेम में कर सकते हैं, दूसरे को अधिकार ही नहीं। वो भी अतिशय प्रेम में करते हैं भगवान, अतिशय प्रेम होता है भगवान में, कृपा होती है तो मर्यादाओं को पीछे रख देते हैं और उसमें लोगों को आनंद आता है। अभी कोई कहे कि इतनी जोर से बरसात हुई, क्या बताए, गलियों में इतना इतना पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर गया, आने जाने के रास्ते रुक गए, न तो नापा सर जा सके, न इधर बेड़ा सर जा सके, न मूर सर जा सके, बिल्कुल चारों तरफ हवा अलग, इतना इतना पानी भर गया, लोग खुश हो जाएगा, क्या इतनी बरसात हुई, हाँ इतनी बरसात हुई, सब खड्डे खोज रहे, तालाब सब भर गए और जाने आना ही बंद हो गया लोगों का। वाह वाह, बहुत जोर से बरसात हुई, तो वहां मर्यादा खत्म हुई कि नहीं, चलने की मर्यादा खत्म हुई, रास्ता ही नहीं दिखे, पर अच्छा लगता है क्योंकि बरसात हुई है। ऐसे मर्यादा का उल्लंघन कभी कभी प्रेम में जब भगवान करते हैं तो अच्छा लगता है, दूसरे का द्वारा मर्यादा का उल्लंघन अच्छा नहीं लगता। भगवान राम ने भी मर्यादा का उल्लंघन किया, भगवान कृष्ण ने भी मर्यादा का उल्लंघन किया, कईयों ने भगवान के अवतारों में देखा जाए तो बहुत मर्यादा पर वो बहुत प्रिय हो, वो उल्लंघन अच्छा लगता है। अब डॉक्टर है, वो छुरा लेकर के यहां काटने लगे छाती को, तो कितना दिखता था कोई किसी के छुरा लगाना कोई मर्यादा है, पर वो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, अच्छा हो जाता है, इनाम देते हैं, डॉक्टर साहब हम आपको इनाम देंगे, क्यों भाई हमने तो आपकी काटा है, हड्डियां भी काटी है, इतना किया है, अंदर से हार्ट निकाल करके, साहब ये अच्छा है, तो मर्यादा का तो उल्लंघन हुआ परंतु उसको पुरस्कार मिलता है। ऐसे मर्यादाओं का उल्लंघन अपने को कोई करने का अधिकार नहीं। हम लेके छुरा लेके बैठ जाए, साहब हम भी आपको काटेंगे, यहां से काटेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा। आपके पास प्रमाण पत्र है क्या चिकित्सा करने का, आप कोई ऑपरेशन करने की पढ़ाई पढ़े हो क्या? वो डॉक्टर भी तो करता है, उसको अधिकार है, अपने को अधिकार नहीं है। इसलिए मर्यादाओं के ध्यान में रखते हुए सेठ जी ने कहा है, तो पतियों को भी अपनी मर्यादा देखनी चाहिए, बिचारी का कसूर क्या है, क्यों मना करूं। हां दूर गांव में हो, अकेला भेज रहे हो, वहां तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, परंतु सत्संग अत्यंत नजदीक हो, पास में हो, अड़ोस पड़ोस के सब जाते हो, खुद की रुचि नहीं है, ये तो खुद की कमी है, उस कमी को जो है स्त्रियों पर डालना ये भी अच्छा नहीं है। परंतु सबसे बढ़िया बात ये है, अपने घरों का व्यवहार पहले की अपेक्षा खूब अच्छा रखे, इसीलिए ये सब बातें होती हैं, व्यवहार को हम लोग नहीं बदलते। ये सेठ जी की बात का मूल सारांश है। अब के साथ